संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान।
द्रव्यलिंग और भावलिंग की चर्चा चल रही है। द्रव्यलिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हमारे पंचम काल का नया उत्पादन हो, अथवा दुष्ट मुनिराजों का नाम हो। शास्त्रों में ये बात आती है ना कि नौवे ग्रेजुएट तक द्रव्यलिंग में बुने जाते हैं। उससे एक बात स्पष्ट है कि नौवे ग्रेजुएट तक तो पंचम काल में कोई जाता ही नहीं है। एक दो स्वर्गों के ऊपर के जाने की बात ही नहीं है, तो चौथे काल की बात है। और अभव्य भी पंच परावर्तन करता है, तो अशुभव परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन वगैरह नौवे ग्रह तक जाने से होते हैं। तो उन परावर्तनों में इसका मतलब है कि वो अभव्य पहले गुण स्थान वाला होता है और बिल्कुल वो निर्दोष 28 मूल गुणों का पालन, समिति वगैरह का पालन उसके होता है। बाही में जो अपन ने कल भेद किया था ना, शुद्धोपयोग तो नहीं होता। तीन कषाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति भी नहीं होती, मिथ्यात्व के अभाव रूप सम्यक्त भी नहीं होता। फिर भी उस टाइप का शुद्ध भाव, इस शुभ भाव और उससे भूमिका में जैसे शास्त्रों में वर्णित है, ऐसी शुभ क्रिया होती है और उसके बल से ही वो नौवे ग्रीवेक तक जाता है। इसका उन्हें चौथे काल की बात है, अनादि निधन बात है कि वो द्रव्यलिंग मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी होना ये कोई पंचम काल का नया उत्पादन नहीं है, ये कोई भ्रष्टता का नाम नहीं है। द्रव्यलिंग रमल जी ने उसके लिए लिखा है कि उसकी जो भूल है जो अंदर में, वो तो केवल ज्ञान गम है। केवल ज्ञान गम इस अर्थ में है, करुणानि योग सैद्धांतिक रूप से तो कह देता है कि मिथ्यात्व का अभाव नहीं है, अनंत अनुबंधी का अभाव नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर व्यक्ति में वो पकड़ना बहुत कठिन है, असंभव है एक तरह से। क्यों है? क्योंकि उसका आचरण तो निर्दोष है ही, भाव भी निर्मल है। निर्मल मन शुद्ध नहीं, वो शुद्धोपयोग जैसे, क्योंकि टोडरमल जी ने लिखा कि अंदर छल से ऐसा काम करे तो फिर वैसा जीव नम्मे ग्रीविक तक कैसे जाए। इसलिए वो छल से भी ये कार्य नहीं करता है, अलौकिक कामना की दृष्टि से कार्य करे तो भी नौवे ग्रीवेक तक नहीं जा सकता है, वो निदान बंद हो जाएगा। तो बिल्कुल आत्मकल्याण की भावना से ऐसे उसके परिणाम शुभ रूप निर्मल होते हैं, तब वो नौवे ग्रीवेक तक जाता है। अब वो से सम्मा दर्शन है कि नहीं है, इस बात का भी छदमस्त की पकड़ में इसलिए नहीं आता है। छदमस्त का मतलब श्रुत ज्ञान, मत श्रुत ज्ञान वालों को। अवधि ज्ञान तो जान सकता है कर्म के उदय को, कि मिथ्यात्व कर्म का उदय है कि नहीं है, ये उसकी बात नहीं है। अभी तो अपनी उतनी बात करना, अपने अपन नहीं पकड़ सकते। क्यों नहीं पकड़ सकते? कि बाहर में तो कोई दोष है नहीं, आचरण में और स्वभाव में भी और प्रतिपादन में भी दोष नहीं। तो बिल्कुल जिनवाणी के अनुसार बोल, एक शब्द भी है उसे बांधा, हा भाषा से बना रहता, उसका भाव उसको अंदर नहीं खुले, लेकिन भाषा में कहीं कोई डिफेक्ट नहीं आता है। ऐसा नहीं कोई छल से बहुत होशियारी से भाषा बोलता है, इसलिए क्योंकि उसे आगम में बहुत अटूट श्रद्धा है और इसकी वजह से बिल्कुल आगम से रख करके ही वो बात बोलता है। और उसके छोपसम ज्ञान में, अनुभव ज्ञान में नहीं, वो बात स्पष्ट भी है कि पर से भिन्न, त्रिकारी भिन्न, राग से भिन्न, भगवान आत्मा दृष्टि का विषय होता है। वो सब बातें अत्यंत स्पष्ट है। तो अब ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि जिसके कारण उस सामने वाला के ध्यान में ये बात पकड़ में आवे कि ये द्विलिंगी है कि भावलिंगी है। और वे मुनिराज जो संघ में विद्यमान हैं, वे तो इतने आत्मार्थी हैं कि उन्हें दूसरे की तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं है। जो सामान्य साधु है ना, उनके तो माथे की कोई जिम्मेवारी भी नहीं है। जो उपाध्याय और आचार्य हैं, वो भी बाहर में उसका जो एकदम स्पष्ट दिखाई आचरण देता है उसमें निर्दोषता का ही ध्यान रखते हैं। वे भी अपने काम में रहते हैं। मैंने कहा सैकड़ों हजारों मुनिराज हैं, तो एक एक की ऐसी बिल्कुल पोस्टमार्टम करके और देखने की, जैसे अपन कहते हैं आगे पता से जाँच चल गई है, खून की जांच ऐसी जांच करते फिरते हैं क्या भी? सहज भाव से पकड़ में आ जाए तो आ जाए। हम आजकल की जो ऐसी वृत्ति हो गई है कि हर एक में समझती है ऐसा थोड़ी देखते फिरते हैं, सूंघते फिरते हैं, तो क्या प्रयोजन है? तो हम ये कह सकते हैं कि उन्हें व्यवहार का प्रयोजन है, क्योंकि जो संघ में रहते हैं उनका एक नियम है कि जो पहले के दीक्षित हैं उन्हें, जो बाद के दीक्षित हैं उन्हें नमस्कार करना पड़ता है। मतलब उनकी विनय मर्यादा का की सीमाएं सुनिश्चित हैं। जैसे अपने होता है ना भाई, अपने अध्यापक को नमस्कार करना है, तो जैसे मैंने जूनियर विद्यार्थियों, सीनियर विद्यार्थियों को यथा योग्य नमस्कार करें, विनय करें, ऐसी सारी चीजें वहां नक्की होती है कि आचार्य को इस तरह करें, उपाध्याय को इस तरह करें, सर्व साधु को इस तरह, अपने से सीनियर जो पहले दीक्षित थे उनसे इस तरह करें, तो पहले से बाद के दीक्षित वालों को इस तरह से उन्हें धर्म वृद्धि दे दे, कि जो भी वो सब शब्द भी एक तरह से सुनिश्चित हैं, तो वो व्यवहार उन्हें निभाना पड़ता। और आप कहेंगे कि यदि किसी मिथ्या दृष्टि को, तो उसका पर वही उपाय है कि वो तो व्यवहार है, यदि व्यवहार निर्दोष दिखाई दे रहा है और वो भी सहज दिखाई दे रहा है, ऐसी किसी की डिटेल डिटेल में जाकर के जांच करने की बात नहीं है। अपन देखते ना ग्रस्तों में कि भाई ये सच्चरित्र है, सज्जन है, इन्हें कभी कोई चोरी चपोटी नहीं पकड़ी गई, कभी कोई किसी माँ बहन को छेड़ने की कोई बात नहीं सुनी, शब्द शास्त्र खान पान में कोई मांस मदरा गया कभी देखा नहीं गया। तो हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छे धर्मात्मा और सज्जन है। हम आपको समझते हैं, आप हमें समझते हैं कि 24 घंटा हमारे पीछे जासूस लगाए रखे रहते हैं, हम आपके पीछे लगाए रहते हैं। बोलो अजित भाई, अभी अपन कम से कम 10-15 साल से परिचित थे और आप मेरे डेली के श्रोता हैं, तो अकेले अपन तो यही देखते हैं आपकी शकल को, आप हमारी शकल को, बाकी 23 घंटा कहाँ मिलते हैं? बोलिए, मैं आपके घर गया ना आप मेरे घर गए, तो 24 घंटा में कौन सा आपका वाचिंग करता हूँ? फिर भी यदि कोई आप मेरे से पूछे कि अजित भाई को आप जानते हैं, तो मैं कहूँगा हाँ बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अच्छे धर्मात्मा हैं, बहुत सात्विक वृत्ति वाले, यदि छाती ठोक के कहूँगा कि नहीं, कि मेरे को कोई शंका मन में पैदा होगी कभी, मैं अब तलाशूंगा, पहले जासूस बैठा लूंगा, फिर आपको बताऊंगा क्यों। अरे के हम आपस में एक दूसरे के कितने असंपृक्त हैं और कितने जुड़े हुए और कितने दूर हैं, कितने नजदीक हैं और कितने दूर हैं, भावों से इतने नजदीक हैं कि एक दूसरे के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, सिद्धांत की श्रद्धा है, एक दूसरे के चरित्र की श्रद्धा है, एक दूसरे को सज्जनोत्तम समझते हैं, ऐसी है कि नहीं है? बाकी 23 घंटे कोई बातें ही नहीं होती, महीनों नहीं, बरसों नहीं, देना नहीं, देना नहीं, आप प्रवचन सुन के चले जाते हैं, हम आपको सुना देते हैं। यही सही है, ये जो संबंध है यही सही है, बाकी लपड़ झपड़ कोई ज्यादा सही नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है, तो विकृति ही पैदा करने वाली है। तो मेरा और नजदीक संबंध में बढ़ाऊं और जाकर आगे बैठूं आपके साथ घंटे घंटों गप्पे लगाऊं, आप मेरे लिए घर टेबल आने, आपके घर नाश्ता पानी करने जाऊं, आप मेरे घर आए, ये कुछ ज्यादा अच्छी बातें नहीं है क्या? उनमें विकृति ही पैदा होने वाली है। ये जो धर्मी सो बहु बच्चे प्रीति सम वाला बात्सल है, ये ही धर्म का स्वरूप है। उसमें कोई प्रेम की कमी ऐसा अनुभव नहीं करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई मेरे में कोई कमी है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सही, बिल्कुल नेचुरल, यही रास्ता है। हम अपना कल्याण करें कि हम जगत की जांच करते बैठे कौन बेईमान है और कौन ईमानदार है, इसकी जांच हम करते बैठे दुनिया भर में। हम सीबीआई डिपार्टमेंट है के वाले हैं कि हम कि कोई ज्ञानी दूसरे की, अगर मुनिराज साधु संत कहा, वे तो हमसे और 100 गुने निरी होंगे ना, होने चाहिए ना। जो विनय का व्यवहार है तो एक मुनिराज दूसरे मुनिराज को देखे तो नमस्ते कर ली, बाकी लेना देना नहीं, कुछ बात नहीं, चीत नहीं, चर्चा नहीं, वार्ता नहीं, कोई प्रश्न हुआ तो पूछ लिया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। वो सब तत्चर्चा तो करते ही रहते हो, तत्चर्चा के नाम पर गप्पे लगाना ऐसा कुछ नहीं होता है। बस तो वास्तव में कोई तत्व की बात हो, पूछना हो, कोई बताना हो तो बता दें, अपना अपना अध्ययन करो। चर्चा के लिए चर्चा, तो भाई बैठो तो तब चर्चा करने के लिए बैठे हैं, अब पूछो ना कुछ, पूछो ना कुछ, मुझे तो कुछ पूछा नहीं, तुम पूछो, अच्छा चाहे तो मैं ही पूछता हूँ, चलो। तो क्यों साहब वो आत्मा का अनुभव कर, तत्व चर्चा का नाटक है क्या? इसमें क्या है? यदि आपस में करना है तो एक सुनिश्चित विषय रख लो, ये समय सारी पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, इस पर चर्चा, आप मेरा मतलब समझे ना, और करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे ही बस चर्चा के लिए चर्चा करना वो नहीं है। तो ऐसा सहज प्रति वाले मुनिराज कहाँ एक दूसरे को वो कह अकेले साथ व्यवहार कुछ नहीं, वो व्यवहार जो एकदम तुम्हारी आंखों के सामने जो व्यवहार दिख रहा है बिना प्रयत्न के, उसमें यदि कोई डिफेक्ट नहीं है और आपको उसका कोई दोष मालूम नहीं है तो उसमें कोई वो नमस्कार के व्यवहार में कोई दोष नहीं है। अब देखिए, एक तो एक सैद्धांतिक बात हुई, जो अपने मुख में जो गलती है कि वो ऐसा समझते हैं कि यदि वो सामने वाला मिथ्या दृष्टि हुआ और मैंने इसमें इतना नमस्ते मेरा हो गया तो सारा मिथ्या तो मेरे में घुस जाएगा, जैसे कि वो छूत की बीमारी होती है ना, एड्स वगैरह होती है, कुछ जो और भयंकर बीमारी है, तो वे मेरे अंदर में ऐसी लग जाएंगी, इसलिए मेरे बराबर जांच परख कर करके क्यों है वो करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो हमारी वृत्ति अंदर में जो हो गई उसके लिए है। अब इससे उलट दूसरा चक्कर क्या है कि वो कहते ठीक है आपको जांच करने का क्या अधिकार है, ग्रह से थोड़ी बुरी राजाओं की जांच कर सकते हैं, और फिर ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो इसी आधार पर, और इनको किसको कहाँ फुर्सत है, डॉक्टर साहब ने भी कहा था किसी को फुर्सत नहीं है, रूप से दिख जाए तो ठीक है, नहीं दिख जाए तो ठीक है, तो क्या झंझट करो। एक बहुत बड़े विद्वान डॉक्टर नाम से धारी, अभी नाम बताना मैंने उसे नहीं समझता हूँ, तो उन्होंने मेरे से कहा साहब मैं किसी भी महाराज के पास नहीं जाता, कोई इज्जत में नहीं पड़ता, ऐसा नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं करता, बिना पूछे। न मालूम उनके दिमाग में ये बात घुस गई कि जैसे कि मुनि राजाओं के पास जाना और मेरी दृष्टि में बहुत बड़ा अपराध है, और यदि वो मेरे को ये बात बताएंगे कि वे मुनि राजाओं के पास नहीं जाते हैं तो मैं उनको बहुत महान विद्वान मान लूंगा, तो जाते हैं मान लूंगा तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। तो अपने आप बिना पूछे ही बराबर ये बात कहते, और कहते कहते फिर ये बोलते हैं साथ में कि यदि कोई आमने सामने टकरा जाए, जाता तो हूं नहीं, हो जाए कभी समाज मिल जाए तो नमस्कार कर लो,
क्या?
तो नमस्कार कर लेता हूँ। ये भी मैंने पूछा नहीं था कि नमस्कार आप करते हैं, कहीं टकरा जाए तो फिर बिना ही पूछे आगे कहते हैं क्योंकि इसलिए कर लेता हूँ कि नमस्कार नहीं करूँ तो वो मुझे पिटवा देंगे, क्योंकि अब आजकल सब ऐसे ही हो रहा है। अभी तीनों वाक्य एक साथ क्यों कि पिटवा देंगे, ये कितना बड़ा मतलब दोष है कि तुम्हारे चित्त में यदि ऐसी बात है, उनके प्रति ऐसी बात है और सतमुज दिगंबर मुनि महाराजों की यदि स्थिति पर पहुंच गई है कि लोग इस लेवल तक उससे भयाक्रांत होने लगे हैं कि अपनी जान बचाने के लिए और पिटने से बचने के लिए नमस्कार करने हैं, तो अभी तो बहुत ही सोचनीय बात हो जाएगी। क्यों कैसी बात करते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, आप समझते नहीं, आप आपको क्या पता, आप क्या जानते हैं, आप क्या जानते हैं, आप क्या। इसके बाद कहते हैं कि भाई तो उस भय से यदि कर लिया चाल मैंने तो वो तो सचमुच ही फिर नहीं, तुम निर्णय ये कर रहे हो एकदम इतने इतने गिरे हुए मान करके भी अपनी जान बचाने के लिए कर रहे हो, कि क्या अर्थ है इसका बोलिए। क्या पता ये क्वालिटी समझ रहे भी अपनी किसी पर, वो जिनकी के बारे में कह रहे हैं उनकी तो बात जाने दो, लेकिन उनकी खुद की ये क्या है, खुद की ये क्या है, क्वालिटी है कि डिसक्वालिटी है, उसे कुछ समझ नहीं। अपने तो बहुत साथ व्यापार है, भय आशा स्नेह लो वास्तव कुदेवागम लिंग नाम प्रणाम दृष्टि। तो कुछ लोग मैंने इस नाम पर व्यवहार ठीक है, व्यवहार ठीक है, यदि सचमुच व्यवहार ठीक है, जन्म में गृह जाने वाले जो द्रिवलिंगी मुनि, तो द्रिवलिंगी मुनि को नमस्कार करने का निषेध कहाँ होगा? बोली मैंने कल कहा था कि कुंड कुंड ने जो लिखा है कि हमारे शत्रु को भी द्रिवलिंग नहीं हो, वो तो भाव लिंग से रहे द्रिवलिंग है और उसका अर्थ इतना ही है कि नौवें गृह तो वो जाएगा, जिसको शत्रु को हो चाहे मित्र को हो चाहे उनको खुद को हो, लेकिन उससे जो मुक्ति के मार्ग की जो सिद्धि है जो मुनि धर्म से होती है वो नहीं होगी, तो इतना ही उसका अर्थ है, इससे ज्यादा कोई अर्थ नहीं है। और द्रिवलिंग मुनि की चर्चा के संदर्भ में और बस लेकर के लोग ऐसा कहने से शास्त्र में लिखा है वो कितने 900 कितने इतने जीव, 9000 लाख कितने जीव में गोद में जाएंगे, तुम तुम काल में मुनिराज में वैसे भी ये जो चर्चा कुछ आती है ना, कितने आते हैं 7.5 करोड़ 9 लाख जो भी हो गई, मुझे उसमें ज्यादा रस नहीं है, मैं उस संख्या को याद भी नहीं रखता हूँ, रखना भी नहीं चाहता। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो निगोद जाने वाले हैं वे कोई द्रिवलिंगी निगोद जाएंगे कि भावलिंगी निगोद जाएंगे नहीं है, वो तो मुनि के भेसी भेषधारी नट श्रवण अथवा भ्रष्ट मुनि जाएंगे, आप समझेंगे ना, वे मुनि थोड़ी जाएंगे, सारे लगा इतने मुनि जाएंगे। क्या कह रहे तुम, तुम्हारे दिमाग में है क्या, पागल हो गए हो? तुम्हारे मुनिराज निगोद जाएंगे नरक जाएंगे तो मोक्ष कौन जाएगा, स्वर्ग में कौन जाएगा? नरक निगोद जाएंगे वे मुनिराज हैं, बोलिए तो वो तो सब शास्त्र में लिखा, हम क्या करें, वो तो वहां जो मुनि शब्द लिखा है वो बेसधारी उसके अर्थ में ही लिखा है, ये हमें समझना पड़ेगा, वहां थोड़ी मिटा सकते हैं साहब। वो कोई ऐसी नई बात नहीं है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना कि वो चौथे काल में नौवें गृह तक जाते थे भावलिंगी द्रिवलिंगी मुनिराज जी, तो उसी चौथे काल में जब वो ऋषभदेव ने दीक्षा ली थी उनके साथ 4000 राजाओं ने नकली दीक्षा ले ली थी, तो उसके जमाने से है, मेरे कहने का मतलब कोई पंचम काल में कोई बहुत बड़ा अद्भुत आश्चर्य हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया, क्या बताएं सब आपको, इतना गजब हो गया, इतना गजब हो गया, इतना गजब हो गया। पंचम काल में बहुत पाप, पंचम काल में ज्यादा नहीं बढ़ सकता, बढ़ ही नहीं सकता, शास्त्र कहते हैं। अन्ना जी से पूछ लो, क्यों 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 कहता हूं मैं, करुणानि योग कहता है, क्यों कहता है कि नीचे ज्यादा नरक के रास्ते ही खुले नहीं है। जब यदि वो ज्यादा पाप हो सकता होता पंचम काल में तो फिर सातवें नरक में जाते, छठवें नरक में जाते, कोई जाता नहीं सातवें छठवें नरक में, तो ज्यादा पाप कैसे हो सकता है। पाप का प्रकर्ष नहीं है भाई साहब, चौथे काल में पुण्य का प्रकर्ष भी होता है, पाप का प्रकर्ष भी होता है और धर्म का प्रकर्ष भी होता है। और अभी तो सबकी हानि हुई है, ऐसा मत समझना कि किसी की हानि नुकसान हुआ किसी को लाभ हुआ है, कि पुण्य को नुकसान हुआ पाप को लाभ हुआ है, धर्म को नुकसान हुआ है पुण्य पाप को लाभ हुआ, ऐसा नहीं है, सब को नुकसान ही नुकसान हुआ है। क्यों, देश में बाढ़ आवे, तूफान आवे, करोड़ों की संपत्ति जल जाए, एक दूसरा देश आक्रमण कर देवे, तो कुछ लोग फायदे में रहते हैं, कुछ लोग नुकसान में रहते हैं, ऐसा नहीं है। कहने वाले तो कहते हैं कि अनाज की कमी होगी तो व्यापारियों ने अनाज डाल लिया, खूब कमाया, भी कुछ लोग नहीं है, वे तो वे ही शत्रु ही है, जैसे जो आक्रमण कर रहे हैं ना वही है। वैसे तो कॉमन तो यही बात है कि ये जो संकट आया है, यदि अनाज की कमी पड़ गई है तो सारा देश दुखी होगा, फैक्ट तो ये है। क्यों, किसी का लाभ किसी का नुकसान, तो पंचम काल में सबकी हानि हुई है, पाप की भी हानि हुई है, साथ में नरक में जाने लायक कोई पाप भी नहीं कर सकता। दीपायन मुनि जैसा कोई मुनि भी नहीं हो सकता है, इतनी आग लगा सकता है कि पूरी द्वारका जल जाए, वो बात अलग है। तो एक आध भाषण भाषण दे के गाँव में 10-5 लोगों के हृदय में आग लगा दे क्या वो दीपायन मुनि जैसी पूरी द्वारका को भस्म कर देने की आग लगा सकता है कोई, तो पाप भी कर रहा उन्हीं में भी, रिश्तों में भी, मतलब वो तो सब जगह हानि है। और ऐसा रस लेने की क्या बात है कि साहब इतने मुनि निगोद जाएंगे, इतने जाएंगे, एक ग्रस्त तो अनगिनत जाने वाले हैं। यानी उन रिश्तों की चर्चा जनागम में की गई है तो उसके नाम पर हम जैसे कि हमारी विरोधी पार्टी के हैं, हम उसे झंडा लेके फिर से फिरें और जो उसकी चर्चा करते फिरें, ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। जैसे हमारे देव सास गुरु है जिनकी हम रोजाना पूजन करते हैं, वो मन वो भ्रष्ट नहीं, मन जो मुनि शब्द है वो हमारा उनके उनका द्योतक है और उनमें द्रव्यलिंगी और भावलिंगी दोनों ही शामिल हैं। मैंने वो द्रव्यलिंगी तो है ही जो भावलिंगी के साथ द्रव्यलिंग होते हैं। मैंने बोला ना जैसे अभी कल बोला था कि भावलिंग तो वो शुद्धोपयोग और द्रव्यलिंग में जो वो स्वभाव रूप द्रव्यलिंग और क्रिया रूप नैन दिगंबर दशा रूप द्रव्यलिंग, तो नैन दिगंबर दशा रूप द्रव्यलिंग 14 गुण स्थान तक रहता है, स्वभाव रूप 10वें गुण स्थान तक रहता है। इसलिए द्रव्यलिंग शब्द के प्रति जो हमारे हृदय में एक हीन भावना खड़ी हो गई है उससे हमें मुक्त होना चाहिए। और कुछ जिन भ्रष्टों के लिए आप द्रव्यलिंगी शब्द का प्रयोग करते हैं वो तो द्रव्यलिंगी शब्द का अपमान है, एक बदमाश आया रेल में बैठा था, एक बहन के पैर पे जानबूझ के पैर रख के रख दिया, तो ऊपर से उठा भाई क्या 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 बहन क्या क्या जानबूझ के क्या बहन क्या क्या बहन क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, पैर हटाओ तो वो तो सुने नहीं, जानबूझ के रखा ना,
क्या हुआ क्या हुआ क्या हो गया, नाराज क्यों हो रही है, गप्पे लगाए उसने। तो बहन जी ने तो बगल में दूसरा बैठा हुआ सज्जन आदमी बोला, भाई साहब तुम्हारे मुख से एक बहन जी शब्द सुखा अपवित्र क्या, अब मेरा मतलब समझ के नहीं समझते, तुमने बहन बहन शब्द का अर्थ समझते हो, यदि बहन शब्द के अर्थ की पवित्रता तुम्हारे ख्याल में होती तो या तो तुम्हारे मुख से बहन शब्द नहीं निकलता और या ऐसी कुचेष्टा नहीं होती। तो इसलिए मैं कहता हूं ये बहन शब्द का अपमान है ना, वो उसके मुख में जाना बहन शब्द का अपमान है। ऐसे ही जिनके प्रति आपको अरुचि है, जिन्हें आप भ्रष्ट समझ रहे हैं, जो वे कितने 7.5 करोड़ या जितने भी जिनको जाने वाले हैं, उनके लिए द्रव्यलिंगी शब्द कहना द्रव्यलिंगी का शब्द का अपमान है। ऐसा वो जो 14 गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी की बात जाने दो, और 14 गुणस्थान वाले भी द्रव्यलिंगी हो सकते हैं, आपको यह पता लग रहा होगा क्योंकि हमने तो पहले गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगियों की बात सुनी थी, जब कल्याण योगी ने कहा 14 गुणस्थान वाले भी द्रव्यलिंगी हो सकते हैं, 5वें वाले भी, क्यों तभी हमें आश्चर्य हुआ था, हम तो अकेले पहले से द्रव्यलिंगी को ऊपर बढ़ने ही नहीं देना चाहते हैं, पर अब तो आप दोनों 14वें गुणस्थान तक द्रव्यलिंगी को ले गए, क्यों नहीं। लेकिन जो सबसे ज्यादा अयोग्य द्रव्यलिंगियों की चर्चा है, जो पहले गुणस्थान वाले जिसे हम कहते हैं, जो निंदा निंदा के अर्थ में हो सकता है, कदाचित अरुचि के अर्थ में हो सकता है कि ऐसा द्रव्यलिंग हमारे शत्रुओं को भी नहीं है, जब ऐसा कुंद कहते हैं तो भ्रष्टता की बात थोड़ी है, भ्रष्ट को तो वो साधु शब्द में गिनने को तैयार ही नहीं है, द्रव्यलिंग शब्द में तैयार ही नहीं है, द्रव्यलिंग भी कहाँ है, द्रव्यलिंग तो उसे कहते हैं जो निर्दोष हो। मान ले पूछ लीजिए यदि कोई एक लंगोटी लगाए है तो आप उसे द्रव्यलिंगी मुनि मान सकते हैं, जैन दिगंबर धर्म के साथ मान सकते हैं ना, तो दूर के परिग्रह के साथ भी ऐसी बात समझ लीजिए, तो द्रव्यलिंगी भावलिंगी थोड़ी है। तो उस द्रव्यलिंगी की जो चर्चा की है जनागम में, वो नुबोध में जाने वाले द्रव्यलिंगी की बात नहीं है, वो नौवे गृह तक जाने वाले द्रव्यलिंगी के संदर्भ में की है। नौवे गृह तक जाते हैं जिनकी बात करी है ना, आप जानते हैं कपड़ा पहने यदि गृहस्थ है, पंचम गुणस्थान वाला है, छुल्लक है, अहिलक है, तो वो मर के सूल में सुरक से ऊपर नहीं जा सकता, ये तो आप जानते हैं ना, पंचम गुणस्थान वाला है। तो पहले गुणस्थान वाला नग्न दिगंबर मुनि नौवे गृह में सुलभ सुरक से तो ऊपर होगा, नौवे गृह में के नीचे थोड़ी है भाई साहब, इतना तो आप जानते होंगे ना, सब विद्वान लोग बैठे हैं उनके सामने ये बात बताने की जरूरत तो होगी, वायु सागर की स्थिति 6वें सुरक की होती है और 31 सागर तक की होती है, 9वें गृह की वो उसके ऊपर है, 6वें सुरक के ऊपर। तो उस द्रव्यलिंग की ये महिमा है या अपमान है कि पंचम गुणस्थान वाला यदि वो उसके द्रव्यलिंग नहीं है ना, द्रव्यलिंग नहीं मतलब मुनि अवस्था का द्रव्यलिंग नहीं है, तो वो 16वें गुणस्थान से ऊपर नहीं जाने के लिए प्रतिबंधित है, और वो नग्न दिगंबर दशा है, भले ही पहला गुणस्थान है तो वो वहां जाएगा तो कैसे जाएगा, भावलिंग तो उसके है ही नहीं ना, तो द्रव्यलिंग से जाएगा। तो शास्त्र में तो द्रव्यलिंग की इस अर्थ में चर्चा है, मुझे कहीं भी बता दो कि द्रव्यलिंगी निगो जाएगा ऐसा लिखा हो तो मुझे बता दो, आपको ख्याल में आया हो पढ़ रहा हो आप बताओ दो, ये तो सब उस अज्ञान का परिणाम है जिस अज्ञान में यह समझ लिया गया है कि भ्रष्ट मुनि को द्रव्यलिंगी कहते हैं, और जो भ्रष्ट नहीं हो उसे भावलिंगी कहते हैं। ऐसे दो भागों में हमने बांट दिए, जबकि वो एक ही व्यक्ति के दो नाम है, दो अपेक्षाएं हैं एक ही व्यक्ति में। मिट्टी का घड़ा और घी का घड़ा जैसे दो घड़े नहीं है, घड़ा एक ही है और उसी घड़े को वो जिस वस्तु से बना है उस वस्तु की तरफ से कहना उसका नाम मिट्टी का घड़ा है, और घी रखा जाता है घृत का संयोग देखकर उसको घी का घड़ा कहा जाए। घड़ा दो नहीं है, घड़ा एक ही है। तो मुनिराज दो नहीं है, मुनिराज एक ही है। उन्हीं के शुद्धोपयोग को और शुद्ध परिणति को भावलिंग कहते हैं, और उन्हीं के शुभ भावों को और तदनुसार आचरण को क्रियाकांड को बोधलिंग कहते हैं। एक ही मुनि की बात है। अब उसमें से एक निंदनी और दूसरा गैर निंदनी एक कहां से होगा? दो व्यक्ति हो तो उसमें एक निंदनी और एक प्रशंसनीय की बात है। यदि शास्त्र में कहीं लिखा ये मिल जाए हमारे लिए कि द्रिविलिंग को नमस्कार नहीं करना चाहिए तो क्या करें? कोई घबराने की बात नहीं। वो ये कहते हैं द्रिविलिंग और भावलिंग अलग अलग तो है ही नहीं, होने वाला नहीं है। तो वो उसके भाव में ये बात विद्यमान है कि मैं तो भावलिंग को नमस्कार कर रहा हूं, हो गया। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था कि गुरु जी के पैर में चप्पल पहने हैं, कुर्ता पहने हैं, धोती बनाए हैं, चश्मा लगाए हैं, टोपी लगाए हैं, क्यों? अरे साहब गुरु जी को मैं तो टोपी को नमस्कार नहीं करना, चश्मा को नहीं करना, कुर्ते को नहीं करना, धोती को नहीं करना, चप्पल को नहीं करना, तो सब खुलवाई थोड़ी जाएंगे क्या? तो उनको नगर बना करके थोड़ी से नमस्कार किया जाएगा। जब वो नमस्कार वैसी ही स्थिति में करेगा और अंदर में ये समझेगा आप खुद भी और गुरु जी भी और सारा जगत भी कि इसने गुरु के गुरुत्व को नमस्कार किया है, धोती कुर्ता टोपी चप्पल को भी। ऐसे ही वो द्रिविलिंग और भावलिंग दोनों हैं, उनको अलग करने की जरूरत नहीं है। हमारे चित्त में महिमा भावलिंग की है तो हमारा नमस्कार भावलिंग को ही पहुंचेगा, घबराओ नहीं। तुम्हारा माथा भले ही चप्पल पे रखा होगा लेकिन नमस्कार चप्पल को नहीं पहुंचेगा, गुरु जी को, क्योंकि वो द्रिविलिंग भावलिंग का अलग करना संभव ही नहीं है। क्योंकि मान लो चप्पल तो उतरवा दो, क्यों धोती टोपी भी उतरवा दो, कुर्ता भी उतरवा दो, धोती भी उतरवा दो, चड्डी भी उतरवा दो, लेकिन देह को कैसे उतारोगे? तो क्या तुम देह को नमस्कार करना चाहते हो? ये मलमूत्र से भरी है, ये तो कुर्ता धोती से भी खराब है। उसे पेट के अंदर में मलमूत्र भरा है ना, आखिर वो पेशाब की फैली हुई है, उसमें भी पेशाब भरा रहता है, सब है ना, असमन लोग तो उनको नहीं हटाया जाता है। और उसको नमस्कार मुनिराज के भाव कोई पहुंचता है ना, ज्ञान कोई पहुंचता है, दर्शन चारित्र कोई पहुंचता है कि नहीं? कि देह को पहुंचता है, क्यों? वहां ही शंका तो नहीं है। तो धुरता कुर्ती उतरवाने की क्या जरूरत रहेगी? चप्पल उतरवाने की क्या जरूरत रहेगी? और जब ये सब रहते हुए नमस्कार इनको नहीं पहुंचता है तो द्रिविलिंग को भावलिंग से अलग करने की जरूरत कहां रहेगी? तो जहां लिखा के नहीं करना उसका अर्थ ये है कि वो द्रिविलिंग अलग करवा के नमस्कार करना, ऐसा अर्थ नहीं है। उसका अर्थ है कि तेरे चित्त में द्रिविलिंग की महिमा नहीं आना, तेरे चित्त में महिमा वो भावलिंग की होनी चाहिए, शुद्धोपयोग की होनी चाहिए, तीन कसाई के अभाव रूप शुद्ध परिणति की होना चाहिए, मिथ्यात्व के अभाव रूप सम्मा दर्शन की होनी। बहुत से लोग बहुत तरह की बातें करते हैं कि साहब हमें तो आपने एक बहुत अच्छा बताया समझाया, हमारे दिमाग में तो बहुत गड़बड़ी थी, अब हमें आप बता दो कि साहब हम नमस्कार करें कि नहीं करें, हमें एक लिस्ट बता दो कि नमस्कार करने के लिए। तो हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, विवेक समझ रहे हैं ना? डॉक्टर से कहते हैं ना, वो कहते आप हमें बता दो हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कोई कौन सी दवाई फायदा करेगी कौन नहीं करेगी। डॉक्टर कह रहे हम बता देते हैं, सब बात है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तेरी खुद की है कि तू दवाई खा और तेरे को आराम हुआ कि नहीं हुआ। इस सबसे ज्यादा डिसीजन करने वाला तो तू है, हम तो तेरे से पूछ पूछ के डिसीजन कर। आजकल दवाई को एडजस्ट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। मैंने आज से आपकी 5 mg से लेके 500 mg तक की दवा होती है, एक दवा एक ही है, ब्लड प्रेशर आपको रहता है। तो अब आपको कौन सी गोली खाते रहो तो आपका ब्लड प्रेशर आपके नॉर्मल जाएगा। 500 mg की पिए के, 5 mg की पिए के, 10 की के, 15 की, तो क्योंकि तुमको ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तुम ऐसे प्रयोग कर करके हम तो बताएंगे 15 की कर दो, फिर हम वो ऐसा बहुत ऐसा लो हो गया तो फिर 10 की रहने दो, फिर ऐसे हम तो ऐसा बताएंगे। आखिरकार कौन सी गोली लेने से आपको बिल्कुल नॉर्मल सा रहता है, ना गड़बड़ होती है, वो डिसीजन आपको ही करना पड़ेगा। क्यों ऐसे खाने पीने में यदि आपका अगर हैवी नहीं हो जाए शरीर में, हैवी मतलब पेट भारी बनने लगे आपको, क्या खाने से, क्या एडजस्टमेंट, कितना खाने से, कुछ खुराक नक्की नहीं। डॉक्टर डाइटिंग करते हैं ना, बता देते हैं 2 चपाती इतनी है, इतनी क्या दम है 2 चपाती में पाती में, क्यों कि एक के यहाँ 2 चपाती बनती है, मान लो जिसमें 100 ग्राम क्या 10 ग्राम आटा भी नहीं होता है, और एक के यहाँ 2 चपाती में 25 ग्राम 200 ग्राम आटा हो जाता है, तो चपाती का क्या नाप है क्या नहीं, छोटी बड़ी ऐसे सब बात की, क्या खाना क्या नहीं खा, कि तुमको तुम अपने आप तुमको देखना पड़ेगा। तो तुम्हें हैवीनेस नहीं हो, हमारा वजन नहीं बढ़े, ये सब तुमको नक्की करना पड़ेगा ना। क्यों आखिरकार तो आपको स्वयं ही अपना हिसाब से नक्की करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई तुम्हें पंडित बता दे ऐसा संभव नहीं है। ये आपको अपने अपने अध्ययन मनन चिंतन से अनुभवन से आपको स्वयं निर्णय करना पड़ेगा व्यक्तिगत मामलों में। तो पंडित तो वो सिद्धांत बता सकता है, शास्त्र बता सकता है, परिभाषा बता सकता है, स्वरूप बता सकता है, क्या जब मैं ये चर्चा करता हूँ ऐसा सभी देवलिंगी है तो फिर ठीक है, हम तो देवलिंगी मान के नमस्कार नहीं करते थे, यदि देवलिंगी को नमस्कार करने में कोई दिक्कत नहीं है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तो वो तो जो केवल ज्ञान गम है, ये सब जगह तर्क चलता है। केवल ज्ञान गम तो उसकी बात है कि जिसका ऐसा आचरण है कि 9वें गृह तक जाने वाला है उसका केवल ज्ञान गम है मिथ्या। तो लेकिन जिसका माथे पर चढ़ के बोल रहा है, जो भूत प्रेतों को खुद पूज रहा है, दूसरों से पूजवा रहा है, तो जैसे छल ग्रस्त भी नहीं करते हैं ऐसे छल कर रहा है, तो अब मैंने आकाश रोक दिया, मैंने पानी रोक दिया, मैंने पानी बरसा दिया, सांप था सांप को भगा दिया, सांप आ गया, ऐसे छल से मैं झूठी गप्पे गृहस्थी नहीं करता है, ऐसे लोगों को बुद्धू बना रहा है, अब इसमें क्या बताना, क्यों बसें दौड़ रही है क्या? अब समझ लो तुम, मैं तो ये कहता हूं कि जो सारा समाज जिनको दुर्गुण मानता है, एक सामान्य शावक के लिए भी जो काम वो मैं करूं तो भी मेरे को वो माफ नहीं हो, ऐसे दुर्गुण हो रहे हैं। क्यों अभी दिवलिंगी भावलिंगी से कहें नमस्कार करने कहने क्या बोले, कमंडल में से पिस्तौल निकाल ली अब दिवलिंगी है भावलिंगी क्या क्या बता है, कैसा वो 20 लाख रुपया मिले, 5 लाख रुपया मिले, उसमें क्या बताए पागल हो गया। क्यों ये शास्त्रीय शब्दों का अपमान करते हो, इन शब्दों को कहां क्यों उपयोग करते हो? और नमस्कार करें कि नहीं करें, लेकिन रात को 2 बजे तुम्हारे यहां डाकू आ जाए और छाती पे बंदूक रख दे, उन्हें नमस्कार करें कि नहीं करें तो हमसे पूछने आओगे? समझ में आए तो कर लेना, नहीं आए तो नहीं कर, जो निपटा निपटा ना हम क्या करें उसके लिए। लेकिन उसमें मुनि महाराज की बात कहा है, उसमें देव साहिब गुरु की तो बात ही नहीं रही थी। जो उन डॉक्टर साहब ने बताई थी मेरे को, जो अभी मैंने आपको बताया था, क्या कि साहब हम क्या कहने ले, पिटवा देंगे, कर लेते हैं, तो इसमें रही क्या। ये तो जो मोहल्ले का दादा होता है ना, उसको नमस्कार करते हैं ना, भाई ऐसा ही हो गया ना। ऐसा नहीं है कि वो दादा आदि होते हैं। टोडर मिल जी ने मोक्षमा प्रकाशक में लिखा है ना, कितना बढ़िया छंद लिखा है। वो उनका टोडर मिल जी का नहीं है, उन्हें किसी दूसरे का छंद को उद्धृत किया है इसमें पर छठवें अध्याय में, कौन सा छठवां अध्याय है, मुलादी मुलादी मेरी छठवें में है। वो है ना जिसमें जिनके जिनने पाला नहीं है, जिनने पोसा नहीं है, जिनका कर्जा लिया नहीं है, जिनने से अब अध्याय का नाम बोलो तो सीतम्बर दिगंबर मत बोलो, सीतम्बर अगर पांचवें में है तो छठवें में है, तो वो पढ़ता हूं छंद है, पेज नंबर 180 छठवां अधिकार है। सीतामरों का वर्णन तो पांचवें में है, ये तो अपने दिगंबरों का ही। संघ पट का उदाहरण है सीतामर ग्रंथ का। छुत छामा किल कोपी रंग शिशु कहा प्रब्रज चैते कुचित कृत्वा किंचन पक्ष मक्षत कली प्राप्त सदाचार्यकम चित्रम चैत्र गृह गृहयति निजे गच्छे कुटुम्बीयति स्वं सक्रियति बालसीति विदबुधान विश्वम्बरा कीयति। देखो छुदा से कृष किसी रंक का बालक, रंक का बालक समझते भिखारी का बालक, कहीं चैत्यालयादिक में दीक्षा धारण करके पाप रहित होता हुआ, पाप रहित न होता हुआ किसी पक्ष द्वारा आचार्य पद को प्राप्त हुआ, आचार्य बन वह चैत्यालय में अपने घर के समान व्यवहार करता है, निज गच्छ में कुटुंबवत प्रवर्तता है, अपने को इंद्रवत महान मानता है, ज्ञानियों को बालकवत अज्ञानी मानता है और सर्वग्रस्तों को रंकवत मानता है, तो यह बड़ा आश्चर्य है। तथा योर जातो न च वर्धतो न च क्रीतो इत्यादि काव्य है, उसका अर्थ ऐसा है कि जिनसे जन्म नहीं हुआ है, बढ़ा नहीं है, जिनने मोल नहीं लिया है, जिनके हम देनदार नहीं हुए हैं इत्यादि कोई प्रकार संबंध नहीं है, और ग्रस्तों को बैल के समान हाँकते हैं, जबरदस्ती दानादिक लेते हैं, सो हाय हाय यह जगत राजा से रहित है, कोई न्याय पूछने वाला तो राजा से रहता, राजा उसमें हाथ नहीं डालते हैं। वो कहते कोई भी मामला धर्म का हो हम बीच में नहीं पड़ते, ये सुरक्षा की गारंटी और हो गई। इस प्रकार यहां श्रद्धान के पोषक अनेक काव्य उन ग्रंथों से जानना, ऐसा ये उनकी बात नहीं है भाई साहब। द्रिवलिंग शब्द तो जैन दर्शन का शब्द है और वो सच्चे मुनिराज को द्रिवलिंग और भावलिंग दोनों ही अनिवार्य पने होते हैं, इसलिए उसके बारे में कोई निंदा तक की बात नहीं है। तो थोड़ी बहुत जो बात आती है वो तो सिर्फ पहले गुणस्थान बढ़ती द्रिवलिंगी, और वो द्रिवलिंगी माने जिनमें बिल्कुल निर्दोष आचरण हो उनका नाम द्रिवलिंगी है। आचरण में दोष सारी दुनिया को दिखाई दे जाए ऐसी परिस्थिति हो तो उसका नाम द्रिवलिंग है ही नहीं। इसलिए बहुत से लोग जब कहते हैं आप हमें द्रिवलिंगी मानते हैं, तो मैं कहता हूं भाई साहब तो खुश हो जाते हैं क्या, खुश हो जाते हैं हम उनसे कह देते हम आपको द्रव्यलिंगी नहीं मानते हैं तो खुश हो जाए।
अब जो भी उसका अर्थ समझते हो हम क्या करें।